आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत क्लास होता है, परंतु आज श्रीमद् भागवत न लेकर हम चैतन्य भागवत के ऊपर श्रवण करेंगे। तो आइए मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्या, चैतन्य चरितामृतम्, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम्, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्या, श्री चैतन्य चरितामृतम्, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम्, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्या, श्री चैतन्य चरितामृतम्। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कमनायताक्षो, विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो, वंदेहम अनंत अद्भुतेश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु, नीचोऽपि यत् प्रसादात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तक। हरे कृष्ण। तो परम सौभाग्य है कि आज गौर पूर्णिमा परम करुणा वरुणालय भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, और चैतन्य महाप्रभु के इस आविर्भाव के उपलक्ष में गौर कथा का आयोजन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस कलयुग में आज से 524 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, इसके हमारे शास्त्र में अनेक अनेक प्रमाण भी दिए गए हैं। प्राय संसार के लोग भगवान विष्णु को जानते हैं, राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, परंतु महाप्रभु को कोई नहीं जानता है। और यदि महाप्रभु के बारे में कहा भी जाए तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि महाप्रभु भगवान का एक ऐसा स्वरूप है जो छन्न अवतार है, प्रकृष्ट रूपेण छन्न प्रछन्न अवतार है। इस अवतार में भगवान भगवान बनकर नहीं आए, भक्त बनकर आए, इसलिए पहचानने वाले भी धोखा खा जाते हैं। जैसे महारानी कुंती भागवत के प्रथम स्कंद में कहती हैं कि हे कृष्ण, अंतर बहिर्वस्थितम, आप इस संसार के अंदर भी हो बाहर भी हो। कृष्ण, यह संसार आपके अंदर से निकला है और आप इस संसार के अंदर हो बाहर हो, परंतु फिर भी अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, इस संसार के लोग आपको जान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि माया जवनी काचनम ज्ञाधोक्ष जम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। ये प्रभु, आप ऐसा ऐसा रूप धारण करते हो कि संसार में पहचानने वाले भी आपको पहचान नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार, वास्तव में ये अवतार नहीं, ये अवतारी है, साक्षात कृष्ण है। और हमारे शास्त्र में अनेक अनेक प्रमाण दिए गए हैं। जैसे कूर्म पुराण में कहा गया है, कलिना दैय माना नाम उद्धराय तनुभूताम। इस कलयुग में, दहकते हुए कलयुग में, इस घोर युग में जन्म प्रथम संध्यायाम, भगवान का प्रथम संध्या में कलयुग के प्रारंभ में जन्म होगा और भविष्यन्ति द्विजालये। और यह जन्म एक द्विज के घर पर, ब्राह्मण के घर पर होगा। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, अहम पूर्णो भविष्यामि, साक्षात भगवान कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं। वास्तव में यह गरुड़ पुराण और कुछ नहीं, भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी का संवाद है। भगवान स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि, मैं भविष्य में पूर्ण रूप से युग संधो विशेषत, युग संधो का अर्थ होता है दो युग की संधि में, अर्थात द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, मैं भविष्य में जन्म लूंगा। कहां पर? बिल्कुल क्लियर लिखा है गरुड़ पुराण में, माया पूरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुत, मायापुर में, नवद्वीप में, भविष्य में और सची देवी के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। गरुड़ पुराण इसका प्रमाण है। गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, इतना ही नहीं, कुछ लोग देवी भागवत करते हैं संसार में। देवी भागवत में भी कहा गया है, उमा महेश्वर संवाद में, भगवान शिव अपनी भार्या जगत जननी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण, भगवान के नाम का, नाम सिद्धांत, नाम रूपी सिद्धांत को प्रकट करने के लिए, हरि नाम का प्रवर्तन करने के लिए क्वचित श्री कृष्ण चैतन्य नामना, भविष्य में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नाम के भगवान लोके भविष्यति प्रकट होंगे। शिव जी भी इसका प्रमाण है। नरसिंह पुराण में बिल्कुल क्लियर कहा गया है, सत्य दैत्य कुलाधि नाश समये, सतयुग में दैत्य कुल में उत्पन्न होने वाले हिरण्यकश्यपु का नाश करने के लिए भगवान नरसिंह देव जन्म लिए। त्रेतायाम दशकंदरम, त्रेतायुग में दशकंदर, दस सिर वाले रावण का वध करने के लिए भगवान राम जन्म लेंगे। गोपालान परिपालयन, गो गोपी और गोप ग्वाल सखाओं का पालन करने के लिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। और कलयुग में, कलयुग में कौन अवतार लेंगे? नरसिंह पुराण में लिखा है कि गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नामा प्रभु। इस कलयुग में गौरांग, गौर वर्ण धारण किए हुए चैतन्य महाप्रभु नाम के भगवान अवतीर्ण हो गए और प्रिय कीर्तन आकर क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है, कले प्रथम संध्यायाम गौरांग अहम मही तले। कलयुग के प्रथम संध्या में गौर अंग रूप से मही तले में स्वयं आविर्भूत होऊंगा। कहां आविर्भूत होंगे? कहते हैं भागीरथी तटे रमिए। भागीरथी अर्थात भगीरथ के द्वारा जो प्रकट हुई गंगा है, उस गंगा नदी के तट पर भविष्यामी सची सुतर, सची देवी के पुत्र के रूप में गंगा जी के तट पर मैं उत्तीर्ण हूं। तो कई कई सैकड़ों प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। और भी बहुत सारे प्रमाण है, परंतु आप सब तो भक्त हैं, आप सब इस पर विश्वास पहले से ही रखते हैं। परंतु यह तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नकार देते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। परंतु वास्तव में चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण है, और उसका ज्वलंत प्रमाण सर्व वेद वेदांत और शास्त्र का जो फल है भागवत में दिया गया है। निमि महाराज को उपदेश देते हुए नव योगेंद्र में से करभाजन ऋषि कहते हैं कि कलयुग में कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधस। कलयुग में कैसा अवतार होगा? कहते हैं कृष्ण वर्णम। वर्ण का अर्थ होता है स्वर व्यंजन इत्यादि क ख ग घ। कलयुग में एक ऐसा अवतार होगा जो कृष्ण का वर्णन करेगा, और त्विषा अकृष्णम उसकी कांति कैसी होगी, रंग कैसा होगा, कहते अकृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला, और उसमें यदि अ लगा दिया जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है गोरा। तो कृष्ण का वर्णन करेंगे और अकृष्णम वे उसका रंग कैसा होगा, गोरा होगा, गौर वर्ण के होंगे। और उनके शस्त्र क्या होंगे? कहते हैं संग उपंग। अपने संग कई सारे पार्षदों को लेकर आएंगे, जैसे अद्वैत आचार्य शिवास पंडित, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु इत्यादि। और क्या करेंगे? तो कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय, वे भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, वे अपने ही नाम का कीर्तन करेंगे। और उसे कौन पहचान पाएगा? कहते यजन्ति ही सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को जान पाएगा। भागवत में लिखा है मूर्ख व्यक्ति महाप्रभु को नहीं जान पाएगा। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और भागवत में लिखा गया है सुमेधा, जिसमें सुष्टु बुद्धि है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को जान पाता है। इसलिए आप देखते हैं सोलापुर में हजारों लोग रहते हैं, परंतु यहाँ कितने लोग आए हैं? लोग तो बहुत हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं। परंतु जो लोग आए हैं निश्चित रूप से वे सुमेधस हैं, बुद्धिमान है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण है। वैसे तो भगवान परम करुणामयी है, और उनकी करुणा प्रकट होती है उनके अवतार लेकर। भगवान का यह नियम है, यह सिद्धांत है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। गीता में भगवान ने कहा है जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति असुरों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रत्येक युग युग में मैं जन्म लेता हूँ, अवतीर्ण होता हूँ, संभवामी युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं अवतीर्ण होता हूँ। भगवान प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। परंतु अगले द्वापर युग में और इस युग में भगवान अवतार नहीं लिए हैं, भगवान स्वयं जन्म लिए हैं, भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए। और वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो वास्तव में भगवान जब अवतार लेते हैं या भगवान अपने धाम से यहां पर आते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होता है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ कारण होता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है, और बिना कारण के जो कार्य करते हैं वे मूर्ख माने जाते हैं। तो भगवान कुछ कार्य करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है। और भगवान जब एक कार्य करते हैं तो उसके पीछे बहुत कारण सिद्ध हो जाते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। आज का बुद्धिमान व्यक्ति भी घर से निकलेगा तो एक साथ 10-15 काम करके आएगा, यदि बुद्धिमान है तो। तो भगवान भी जब कुछ कार्य करते हैं, भगवान अवतीर्ण होते हैं, तो इसके पीछे बहुत कारण होते हैं और सभी कारण सिद्ध हो जाते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने का, अवतीर्ण होने का बहुत कारण बताए गए हैं, और इस कारणों को दो भाग में बांटा गया है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंतरंग कारण किसे कहते हैं और बहिरंग कारण किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि महाप्रभु के प्रकट होने का, जन्म लेने का अंतरंग कारण क्या है, बहिरंग कारण क्या है। अंतरंग कारण किसे कहते हैं? अंतरंग कारण का अर्थ होता है कि हमारे निजी सुख के लिए, हमारे स्वयं आत्म सुख के लिए जो कार्य करते हैं, जो कार्य होता है, उसे अंतरंग कारण कहते हैं। और दूसरों के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे बहिरंग कारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि आप लोग यहां पर आए हो, तो यहां पर आने में दो कारण होंगे। सबसे पहला कारण होगा कि चलो वहां पर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कुछ आनंद मिलेगा, कुछ हृदय को आनंद मिलेगा। और दूसरा कारण क्या है? अब इष्टदेव प्रभु कई दिनों से बोल रहे थे चलो वहां पर जाकर आए, नहीं तो प्रभु जी को बुरा लग जाएगा। पहला कारण है कि स्वयं अपने सुख के लिए, स्व सुख वासना, स्व सुख इच्छा को पूर्ण करने के लिए वहां जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। परंतु कुछ लोगों को यहां पर आने की इच्छा नहीं भी है तो इष्टदेव प्रभु कई महीने से कह रहे हैं कि मंगला आरती में आइए, गौर पूर्णिमा के दिन आइए, तो चलो प्रभु जी ने कहा है तो जाकर आ जाते हैं। तो जो अपने लिए आए हैं, जो स्व सुख वासना है, वे अंतरंग कारण। और जो दूसरे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यहां पर आए हैं, वह बहिरंग कारण। वैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, उसके पीछे भी इस प्रकार से दो कारण है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। भगवान का कुछ अपना निजी उद्देश्य था, उस निजी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवान आए, इसे अंतरंग कारण कहते हैं। और इस जगत के लिए, दुनिया वालों के लिए भगवान आए, उसे बहिरंग कारण कहते हैं। तो आइए, भगवान का अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। पहले अंतरंग कारण के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतरण हुए, इसको जानने के लिए थोड़ा कृष्ण के बारे में जानना होगा। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतार धारण करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो सतयुग में हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। त्रेता युग में रावण दस कंदर का वध करने के लिए राम अवतार धारण किया। परंतु जब द्वापर युग आया तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सोचे कि वास्तव में अवतार तो लेता हूं और अवतार लेकर इस पृथ्वी पर पाप का भार दूर करता हूं, परंतु दूसरों के दुख को दूर करने के साथ साथ मेरा भी कुछ उद्देश्य है। भगवान अपने धाम में बैठकर सोचने लगे कि मैं रसिक शेखर हूं। भगवान रसिक शेखर है, सभी रसों के भोगता है। और भगवान अपने धाम में बैठकर सोचे हैं कि इस संसार में सब लोग मेरी भक्ति तो करते हैं, कुछ कुछ लोग, मेरी भक्ति तो करते हैं परंतु विधि भक्ति कर रहे हैं, माधुर्यमय भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान की दो प्रकार से भक्ति होती है, विधि भक्ति और प्रेमा भक्ति। भगवान कृष्ण अपने धाम में बैठकर सोच रहे हैं कि जगत के लोग मुझे मानते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, परंतु मेरी भय भक्ति कर रहे हैं। संसार के लोग सोचते हैं कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा। तो दुनिया वालों से डरकर, यमराज से डरकर, यमदूत से डरकर, नरक से डरकर लोग मेरी भक्ति करते हैं। इसे विधि भक्ति कहा जाता है। परंतु उस विधि भक्ति में मुझे उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद मेरी प्रेमा भक्ति में मुझे आता है। भगवान स्वयं इस बात को स्वीकार किए हैं। भगवान श्री कृष्ण को उतना आनंद नहीं आता है। संसार के कई लोग जय जगदीश हरे हे जगत के नाथ, हे जगत के स्वामी, और भगवान को बहुत दिया दिखाते हैं, आरती पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं इससे करोड़ों करोड़ों गुना आनंद मुझे ब्रजवासी में, ब्रज में रहने वाली गोपियों की गाली में आता है। जो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, जो स्वाद मुझे ब्रह्मा जी की स्तुति, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, जो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी। जो स्वाद मुझे ब्रह्मा की स्तुति में नहीं आता है उतना आनंद मुझे ब्रजवासियों की मीठी गालियों में आनंद आता है। तो भगवान ने सोचा कि ऐश्वर्य भक्ति विधि भक्ति में रस नहीं है। भगवान चाहते हैं कि कोई मुझे पुत्र माने, भगवान चाहते हैं कि कोई मुझे सखा माने, कृष्ण चाहते हैं कि कोई मुझे अपना प्रियतम माने। भगवान ने देखा अपने धाम में बैठकर कि बहुत बहुत लोग भगवान को पूज रहे हैं, आरती कर रहे हैं, परंतु ऐश्वर्य भाव में और भय भक्ति कर रहे हैं। भगवान अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि वास्तव में माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति दीन ज्ञान करे लालन पालन। इस संसार के लोगों की भय भक्ति में जितना आनंद नहीं आता है उतना आनंद जब मुझे कोई पुत्र मानकर, मेरी माँ मुझे डांटती है, चिल्लाती है, और चिल्लाकर जब उखल के साथ बांध देती है, उसमें मुझे उससे करोड़ों गुना आनंद आता है। सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमिसम। इस संसार के लोग की ऐश्वर्य भक्ति से करोड़ों गुना आनंद उस ब्रजवासी सखाओं में है, साख्य भाव में मेरा भजन करते हैं और मेरे साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते कहते हैं कि कृष्ण तुम हार गए हो, अब तुम गधा बनो, तुम बैल बनो और अपने पीठ पर मुझे बिठाओ। तब कृष्ण कहते हैं अरे मैं तो ब्रजराज का पुत्र हूँ, नंद बाबा का पुत्र हूँ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर नहीं बिठाऊंगा। तब उनके सखा कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से, हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। कृष्ण को डांटते हैं, रुलाते हैं, भगाते हैं। भगवान कहते हैं कि उस सखाओं की उस गाली में, उस डांट में मुझे उतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उतना आनंद ऐश्वर्य भक्ति में नहीं आता। और प्रिया यदि मान करी करे ये भत्सन, वेद स्तुति है ते हरे से ही मोर मन। और यदि कोई मेरा प्रियतम बन के माधुर्य भाव में मुझे प्रेम करके मेरी भत्सना करती है, मुझे डांटती है, चिल्लाती है, और जितना आनंद मुझे आता है उतना आनंद और कहीं नहीं आता है। ऐश्वर्य भक्ति विधि भक्ति में उतना आनंद नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को गोपियां है या सखा है या बड़ी गोपियां है, सब लोग डांटते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, परंतु कृष्ण को उसमें बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार से भगवान सभी रसों के भोगता है, माधुर्य, दास्य, साख्य, शांत, वात्सल्य। भगवान ने देखा कि संसार के लोग भक्ति कर रहे हैं परंतु प्रेममयी भक्ति नहीं कर रहे हैं। कोई मुझे पुत्र मानकर भक्ति नहीं कर रहा है, कोई मुझे सखा मानकर भक्ति नहीं कर रहा है, कोई मुझे प्रियतम मानकर भक्ति नहीं कर रहा है। लोग ऐश्वर्य भाव में भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि अब यह रस में प्रेममयी भक्ति करने के लिए स्वयं मुझे ही जाना होगा। भगवान ने सोचा कि अब तक मैं अवतारों को भेजा, नरसिंह वामन वराह राम अनेक अवतारों को भेजा, परंतु प्रेममय भक्ति कोई नहीं किया, इसलिए प्रेममय भक्ति प्रदान करने के लिए अब स्वयं मुझे जाना होगा। इसलिए आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में इस संसार में प्रेम भक्ति का दान करने के लिए भगवान का अवतार नहीं साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही इस धराधाम पर आए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। साक्षात कृष्ण आए और कृष्ण सभी ब्रजवासियों से सभी लोगों से प्रेम किए और सभी रसों में सभी भावों में प्रेम किए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर लीला किए और लीला के साथ स्व सुख वासना अपनी इच्छा पूर्ण की। परंतु प्रकट लीला में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए और सबसे पहले अपनी इच्छा अपनी वासना पूर्ण किए, वे सभी रसों को भोगे परंतु कुछ वासना अपूर्ण रह गई, भगवान की कुछ इच्छा अपूर्ण रह गई। यद्यपि पूर्ण कला में पूर्ण रूप से भगवान आए हैं परंतु उस द्वापर युग में कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण की कुछ वासना कुछ इच्छा अपूर्ण रह गई। अब प्रश्न होता है कि भगवान की भी इच्छा अपूर्ण रह सकती है? भगवान तो पूर्ण है। ओम पूर्ण मद उपनिषद कहती है कि पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उस पूर्ण में से जो वस्तु निकलती है वह भी पूर्ण है और पूर्ण से यदि पूर्ण निकल गया तब भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। भगवान पूर्ण है तो भगवान में अपूर्णता कैसे? श्रुति भी कहती है कि आत्म रामस्य का स्प्रिहा, भगवान आत्मराम आत्मराम है तो आत्मराम भगवान को स्प्रिया वासना कैसे हो सकती है? भगवान की वासना अधूरी कैसे रह सकती है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा कैसे अधूरी रह सकती है? तो इसका उत्तर देते हुए हमारे आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान की इच्छा अपूर्ण रह सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान रसिक शेखर है। भगवान का नाम है रसराज। रसो वै स रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान स्वयं सभी रसों के भोगता है। रस अर्थात शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य ये सभी रसों के भोगता है। और जब तक व्यक्ति के हृदय में रस को भोगने की इच्छा नहीं है तब तक वह उस रस का आनंद नहीं ले सकता है। भक्तों प्रतिदिन तो आप भागवत श्रवण करते होंगे परंतु आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना है इसलिए बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए ध्यान से सुनिए और अपनी निद्रा देवी वश में न कर ले कहीं हमें, ये ध्यान में रखकर सुनिए क्योंकि वैसे भी महाप्रभु को समझना इतना मुश्किल है और ऊपर से नींद आ गई तो फिर नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक रस को भोगने की इच्छा न हो तब तक उस रस का आनंद नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की भूख नहीं है प्यास नहीं है कुछ नहीं है और एक व्यक्ति को दूध पीने की बहुत इच्छा हुई है, कई दिनों से दूध मिला नहीं है दूध पीने की बहुत इच्छा है। अब दोनों व्यक्ति बैठे हैं और दो ग्लास दूध आया। अब उस दो ग्लास दूध में से ज्यादा आनंद कौन उठा पाएगा? जिसको इच्छा है वो या जिसको इच्छा नहीं है वो? इच्छा है वो। तो भगवान रसिक शेखर है, रसराज है, रसराज श्री कृष्ण तो रसराज है इसलिए रस को भोगने की इच्छा भी है। तो भगवान के अंदर रस को भोगने की इच्छा है तो प्रकट लीला में भगवान श्री कृष्ण रस को भोगने के लिए आए परंतु उनकी कुछ इच्छा अधूरी रह गई, कुछ इच्छा अधूरी रह गई। त तब प्रश्न होता है कि भगवान की ऐसी कौन सी चादुरी रह गई जिसके कारण द्वापर युग के बाद कलयुग में भी भगवान को आना पड़ा। तो भगवान की कौन सी चादुरी रह गई है, तो भगवान के साथ जो निकटम पार्षद है वही जानते हैं। आपको शायद पता होगा चैतन्य महाप्रभु के साथ सबसे ज्यादा रहने वाले दो व्यक्ति थे, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर जी ने भगवान की कौन सी वासना, कौन सी इच्छा अधूरी रह गई जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और जो महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण है। तो स्वरूप दामोदर जी इसके तीन अपूर्ण वासना बताते हुए एक श्लोक को उद्धृत करते हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा किदृशो वान येवा स्वाज्यो येनाद भूत मधुरिमा किदृशो वो मदीय सौख्यम चाश्या मदनुभवत की दशाम वेति लोभा तद भावाढ्य समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदो। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का अंतरंग कारण है भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला में जो इच्छा अधूरी रह गई, वे तीन इच्छा अधूरी रह गई वे इस श्लोक में दिया गया है। तो सबसे पहली भगवान की इच्छा अधूरी रह गई ये बताते हुए कहते हैं श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो। कहते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रणय की महिमा अर्थात श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अर्थात और सरल भाषा में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से जब प्रेम करती हैं तो उसे जितना सुख मिलता है वह सुख प्राप्त करने की इच्छा भगवान की अधूरी रह गई। इसके ऊपर थोड़ी व्याख्या करेंगे ताकि आप समझ सको। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो श्रीमती राधा रानी के प्रणय की महिमा क्या है यह जानने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसका अर्थ क्या होता है, जब भक्त भगवान से प्रेम करते हैं या भक्ति करते हैं तो भक्त को कुछ आनंद मिलता है। बिना आनंद के संसार में कोई कुछ काम नहीं करता है। आज संसार में आप देखते हो सब लोग काम करने में जुटे हैं, कई बस यहां से वहां यहां से यहां, हजारों हजारों लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कारण क्या है, कुछ रस मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है। परंतु संसार के जो काम है, संसार में जो सेवा है, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, कुटुंब की सेवा, समाज की सेवा, देश सेवा, मानव सेवा, यह सब सेवा में आनंद तो है परंतु क्षणिक आनंद है, एक बूंद के समान। परंतु भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, कहते हैं समुद्र के समान। इसलिए रूप गोस्वामी को जब ग्रंथ लिखना हुआ तो अपने ग्रंथ का टाइटल ही दे दिए भक्ति रस अमृत सिंधु। अन्य अन्य सेवा से जो रस आता है बहुत क्षणिक है, बहुत थोड़ा है, परंतु भक्ति से जो रस मिलता है वह तो सिंधु के समान, सागर के समान। तो भक्त जब भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें कुछ सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रकट लीला में देखा कि मुझसे कई लोग प्रेम करते हैं और प्रेम करने में अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, लोग मर्यादा छोड़ देते हैं, अपने गुरु की मर्यादा, पिता पुत्र पुत्री की मर्यादा, सब कुछ मर्यादा को तोड़कर मेरे से प्रेम करते हैं। और भगवान ने देखा कि ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे ज्यादा सुखी तो ये लोग हैं। ये पहला कारण है भगवान का, श्री राधाया प्रणय महिमा की त्रिशो। और उसमें भी सभी प्रेम करने वालों में, भक्ति करने वालों में शिरमोर है श्रीमती राधा रानी। भगवान ने देखा कि यद्यपि मैं कृष्ण हूं, कृष्ण का अर्थ ही होता है सुखी, कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना। वेदों में लिखा गया है कृषि भूवाचक नच निवृत्ति वाचक तये रेक्यो परब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि उद्योग आप सब लोग जानते होंगे, कृषि का अर्थ है उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे नित्य निरंतर 2400 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं आनंद है, आनंद की घनीभूत मूर्ति है। ऐसे कृष्ण ने देखा कि मुझसे भी ज्यादा आनंद तो ये राधा रानी ले रही है, मुझसे ज्यादा सुखी तो ये राधा है। तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्ति करने में, मेरे साथ प्रेम करने में ये लोग मुझसे भी ज्यादा आनंद ले रहे हैं, और ये सत्य बात है। एक परम आचार्य डॉक्टर राधा गोविंद नाथ बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे ठंडी की ऋतु में आपको तो अनुभव होगा, गांव में यह होता है, ठंडी की ऋतु में रात को या सुबह सुबह गर्मी लेने के लिए बिजली होती नहीं है, इसलिए एक मटके में कुछ लकड़े डालते हैं और अग्नि जलाते हैं, और आजू बाजू में सब लोग बैठकर उस शीत जो ठंडी होती है उसको गर्मी में बदलते हैं। तो एक मटका है, मटके में लकड़े डालकर अग्नि जलाई जा रही है, उस अग्नि को भोगने वाले कौन है? वे लोग, चार पांच लोग। अब आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए कि वहां पर भोगता कौन है? जिसने अग्नि जलाई है वो भोग रहे हैं अग्नि को, वहां पर भोगता विषय है अग्नि जलाने वाले, वो गर्मी प्राप्त करने वाला, और आश्रय क्या है? वो मटका जिसमें अग्नि जल रही है। तो आप देखिए कि जिस व्यक्ति के लिए वो अग्नि जलाई जा रही है, उस व्यक्ति से ज्यादा गर्मी, उस व्यक्ति से ज्यादा ताप उस मटके को लगता है। जिस भोक्ता के लिए वो अग्नि जलाई जा रही है, उस भोक्ता से ज्यादा वह ताप व अग्नि उस मटके को लगती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भोक्ता है, भक्ति भगवान के लिए होती है। तो भगवान के लिए जब भक्त भक्ति करते हैं तो भगवान से ज्यादा सुख उस मटके को, उस आश्रय को, उस व्यक्ति को, उस भक्त को मिलता है। तो प्रकट लीला में कृष्ण ने देखा कि मेरे से ज्यादा सुखी तो ये लोग हैं, राधा रानी हैं। तो सोचे, लोभ उत्पन्न हुआ कि मुझे भी यह सुख आस्वादन करना है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि ये लोग सुखी होते रहे और मैं बैठा रहूं। भगवान के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। तब भगवान ने सोचा कि अब ये लोगों की तरह मुझे यदि आनंद प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले विचार आया कि ये लोग मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए इसके जितना आनंद मुझे लेना है तो मुझे भी कृष्ण की भक्ति करनी होगी। अब मुझे मेरी ही भक्ति करनी होगी, मुझे भक्त बनना होगा। भक्त बने बिना राधा के जितना आनंद मैं नहीं ले सकता हूं। तब भगवान सोचने लगे कि राधा की जितना भक्त बनना है और भक्त करके मेरी ही भक्ति करना है, तो इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है जिसके भाव को लेकर मैं भक्त बन सकूं। तब भगवान ढूंढने लगे, तब सोचे कि राधा से बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया, राधा रानी की भाव भक्ति ले ली, और जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी की भाव भक्ति को लिया, तुरंत भगवान का रंग बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, तो कृष्ण तो श्याम वर्ण के थे, महाप्रभु तो गौर वर्ण के हैं। तब इसका उत्तर यह है कि भक्तों, भाव के अनुसार हमारे शरीर का रंग होता है। जैसे कोई व्यक्ति आराम से घर पर सोया हुआ है, प्रसन्न है, तो बहुत श्वेत उन्नत उज्जवल दिखता है, परंतु जैसे ही वह घर से निकला और कहीं ट्रैफिक में फंस गया और किसी के साथ झगड़ा हो गया और किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वही मुख लाल हो जाएगा, कान बिल्कुल लाल लाल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा भाव बदलता है, वैसे हमारा शरीर का रंग बदलता है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की उन्नत उज्जवल भक्ति करती है, इसलिए उनका रंग उज्जवल है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया, तो श्याम वर्ण के कृष्ण गौर वर्ण के हो गए, और चैतन्य महाप्रभु इसलिए गौर वर्ण के हमें दिखे जाते हैं। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की अपूर्ण वासना सर्वप्रथम कि श्रीमती राधा रानी जितना सुख, जितनी मात्रा में सुख भोग रही है उतनी मात्रा में मुझे सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए वह सुख प्राप्त करने के लिए मैं भक्त बन के कलयुग में अवतीर्ण होऊंगा, इसलिए भगवान भक्त बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये पहला कारण, महाप्रभु के अवतार का पहला अंतरंग कारण। अब स्वरूप दामोदर जी दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, पहला कारण समझ में आ गया, ठीक है, अब दूसरा कारण। दूसरा कारण कहते हैं, अनया एव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो। कहते हैं कि भगवान अपने माधुर्य आस्वादन करने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवतीर्ण हुए। श्रीमती राधा रानी ब्रज वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं, सखियां हैं, ग्वाल बाल सखा है, ये लोग भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि भगवान की सुंदरता अद्भुत है। अब कृष्ण की सुंदरता की क्या बात की जाए, एक कवि ने तो कहा है कृष्ण ही सुंदर है बाकी सब छछुंदर है। इस संसार में अपने आप को हीरो हीरोइन है सब लोग मानते हैं, सब छछुंदर हैं। ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसके ऊपर लट्टू होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, भगवान की अद्भुत सुंदरता है। भगवान को देखने के लिए गोपियां तरसती रहती है कि कब कृष्ण ब्रज वृंदावन में आए और उन्हें देखे, और भगवान के दर्शन के बिना गोपियां इतनी दुखी होती है, इतनी दुखी होती है जैसे जल से मछली को निकाल दो और मछली बिना जल के तड़पती रहती हैं, वैसे कृष्ण के दर्शन के बिना सभी गोप गोपियां तड़पते रहते हैं, तरस जाते हैं। जाल परत जल जात वही तजनी नन को छोड़, तजनी को मछली को पानी से निकालकर कुछ भी दिया जाए, उसे ऐसी में रखा जाए, गुलाब जामुन रसगुल्ला दिया जाए, झूले पर झुलाया जाए, कितना भी भोग ऐश्वर्य दिया जाए, जब तक पानी में नहीं डालोगे तब तक वह सुखी नहीं होगी। वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं, जब तक भगवान को देखेंगे नहीं तब तक उसे कुछ भी दिया जाए वह सुखी नहीं होगी। कृष्ण की सुंदरता अद्भुत है, और क्या कहूं, ब्रज में तो कृष्ण के जितने सखा हैं कृष्ण को गाली देते हुए कहते हैं, अरे सारे, ये सारे ब्रज की गाली है, कहते अरे सारे तू लड़का बना है तो इतना उत्पात मचा कर रखा है, ठीक से गैया और बछड़े को खाने नहीं देता है। भागवत के युगल गीत में दशम स्कंद में वर्णन है, भगवान जब अपनी बंसरी बजाते हैं तो इस संसार में सब कुछ जड़वत हो जाता है। गाय और बछड़े भोजन करते हैं, घास इत्यादि खाते हैं, जैसे ही भगवान की वेणुनाद सुनते हैं तो चित्रवत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो चित्र के समान न तो निगल सकते हैं न तो बाहर डाल सकते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं। शास्त्र प्रमाण है, भगवान जब वेणुनाद करते हैं तो बहता हुआ पानी पत्थर के समान थम जाता है, और भगवान वेणु बजाते हैं तो ठोस पत्थर पिघल जाता है। चरण पहाड़ी याद कीजिए, प्रकृति पलट जाती है भगवान की सुंदरता से, भगवान की वेणुनाद से। और गोपियां दिन रात ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती रहती है, ब्रह्मा जी आप हम पर कृपा करें, प्रभु हम पर कृपा करें कि हम कुछ क्षण के लिए कृष्ण को भूल सके, क्योंकि कृष्ण इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं कि घर का कोई काम ठीक से नहीं होता है। ये गोपियों की प्रार्थना है, और हमारी प्रार्थना क्या होती है, हम पर कृपा कीजिए कि भगवान हमें याद आए। तो कृष्ण की सुंदरता अद्भुत है। मैं यह कह रहा था कि ब्रज के गोप ग्वाल सखा कृष्ण को गाली देते हुए कहते हैं कि अरे सारे तू लड़का बना है तो इतना उत्पात मचा कर रखा है, लाखों लोग को शांति नहीं लेने देता है, यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर जाते तुझे प्राप्त करने के लिए, कट जाते गला करोड़न के। लड़की बना होता तो तुझे प्राप्त करने के लिए कितने लोग आपस में मर गए होते। भगवान की सुंदरता अद्भुत है, परंतु भक्तों कोई लड़का और लड़की कितनी भी सुंदर हो या कितना भी सुंदर हो अपनी सुंदरता का आस्वादन स्वयं नहीं ले सकता है। कोई लड़की कितनी भी सुंदर हो तो बाकी के लोग उसकी सुंदरता को देखकर खुश होंगे, आनंदित होंगे, परंतु वे स्वयं अपनी सुंदरता का आनंद नहीं उठा सकती है। या लड़का कितना भी सुंदर हो, दूसरे लोग देखकर सुखी होंगे, वहां बहुत सुंदर, परंतु वे स्वयं अपनी सुंदरता का आनंद नहीं ले सकता। तो भगवान को यह दूसरा लोभ हुआ कि ये लोग मेरी सुंदरता का इतना आनंद उठाते हैं, इतना आनंद उठाते हैं, मैं स्वयं मेरी सुंदरता का आनंद नहीं उठा सकता, अब क्या करें? तो मुझे मेरी सुंदरता का आनंद उठाने के लिए क्या करना होगा? भक्त बनना होगा। तो भगवान की यह दूसरी अपूर्ण वासना है कि अनिया एव स्वाद्यो एनाद भूत मधुरिमा की त्रिशो। भगवान ने सोचा कि आमार माधुर्य नित्य नव नव है, आपन माधुर्य हरे आपनार मन। मेरा अद्भुत माधुर्य है और मैं स्वयं उसका आस्वादन नहीं कर सकता हूं, तो अपने ही माधुर्य का, अपने ही सुंदरता का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भक्त बनना पड़ा, भक्त बने और इस कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हो। तो यह है महाप्रभु के इस संसार में आने का, प्रकट होने का दूसरा अंतरंग कारण। अब स्वरूप दामोदर जी तीसरा अंतरंग कारण बताते हुए कहते हैं, मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवत कीदृशम। भगवान श्री कृष्ण को यह तीसरा लोभ हुआ कि राधा इत्यादि मेरी जो अन्य अन्य भक्त है वह लोग मुझे देखकर मेरी भक्ति करके कैसा सुख प्राप्त कर रहे हैं, यह मुझे जानना है। देखिए आप भ्रमित मत होइए, पहले भी सुख आया था, अभी भी सुख आया है, लेकिन पहले जो सुख आया वह मात्रा में था कि लोग कितना ज्यादा सुख उठा रहे हैं, अब मात्रा नहीं है, अब सुख की क्वालिटी है, किस प्रकार का सुख प्राप्त कर रहे हैं भगवान को यह जानना था। उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हो, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन दिया जाए, एक प्लेट में गुलाब जामुन, एक प्लेट में रसगुल्ला दिया जाए, स्वीट राइस दिया जाए, यह तीनों स्वीट दी जाए और आपको कहा जाए कि आप खाइए, और खाने के बाद आपको पूछा जाए कैसा लगा, मीठा लगा। अच्छा, गुलाब जामुन कैसा लगा? मीठा लगा। रसगुल्ला मीठा लगा। स्वीट कैसा लगा? मीठी लगी। उत्तर केवल मिठाई आ सकता है, यद्यपि तीनों का टेस्ट अलग अलग है, तीनों का टेस्ट अलग अलग है, परंतु दूसरा व्यक्ति किस हद तक, कुछ लिमिट तक कह सकता है कि मीठा है या ज्यादा मीठा है या कम मीठा है, परंतु मीठा में भी किस प्रकार का रस है, आनंद है, जब तक कोई व्यक्ति उसे खाएगा नहीं तब तक नहीं जान पाएगा। कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है तो किसी ने पूछा कि कैसा लगा? मीठा लगा। परंतु वास्तव में वह रसगुल्ला कैसा लग रहा है, जब तक वह खाएगा नहीं तब तक वह उसका आस्वादन, वह रस कितना है वह जान नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने देखा कि संसार में रहने वाले मेरी भक्ति करके, मेरा भजन करके कैसा सुख प्राप्त कर रहे हैं, किस टाइप का सुख प्राप्त कर रहे हैं, यह देखने के लिए साक्षात कृष्ण भक्त के रूप में आए और भक्त के रूप में आकर अपनी ही भक्ति करके अपनी भक्ति के सुख का आस्वादन किए। तो इस प्रकार से बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में इस धराधाम पर आए, इसके तीन अंतरंग कारण हैं। स्वयं अपने लिए सबसे पहला कारण क्या बताएं कि भगवान भक्त कितना सुख ले रहे हैं अपने ही सुख का आस्वादन करने के लिए, दूसरा अपनी मधुरिमा, अपने में कितनी सुंदरता है वह सुंदरता का आस्वादन करने के लिए, और किस प्रकार का सुख ले रहे हैं वो उस प्रकार का सुख का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। हरे कृष्णा ये है महाप्रभु के आविर्भाव का अंतरंग कारण। अब महाप्रभु के आविर्भाव का कुछ बहिरंग कारण भी है। यह है महाप्रभु के, भगवान का अंतरंग, कुछ अपना निजी स्वार्थ। अब भगवान के आविर्भाव का कुछ बहिरंग कारण को हम जानेंगे। बहिरंग कारण देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं, अनर्पी चरिम चिरात करुणा वतीर्ण कलो समर पियु तुम उन्वत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदन। भगवान के आविर्भाव का बहिरंग कारण बताते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण बजेंद्र कुमार गोलो के ब्रजेर सह नित्य विहार। पूर्ण भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में अपने नित्य पार्षदों के साथ विहार करते हैं, नित्य पार्षदों के साथ गोलोक धाम में रहते हैं। ब्रह्मार एक दिने तेहो एक बार अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार इस धरा धाम पर आते हैं। देखिए इस लॉजिक को आप समझिए, इसके अंत में हम यह समझ सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मार एक दिने तेहो एक बार। वैसे तो भगवान के अवतार अनंत अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत हैं, भगवान के अवतार भी अनंत हैं। कोटि न मुख कही जात प्रभु के, करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए फिर भी भगवान के अवतारों को शेष नहीं कर सकते, अनंत अवतार है। परंतु ये सब अवतार है, परंतु अवतार और अवतारी में कुछ अंतर है। अवतारी किसे कहा जाता है और अवतार किसे कहते हैं, इसमें कुछ भेद है। अवतार का अर्थ होता है साक्षात कृष्ण, अवतारी का अर्थ होता है साक्षात कृष्ण। और कृष्ण जब कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए एक नया स्वरूप धारण करते हैं उसे अवतार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक सेठ है और बहुत बड़े मिलों का मालिक है, और मान लीजिए उसकी मिल में कुछ गड़बड़ हो गई तो वह सेठ क्या करेगा, वहां पर स्वयं नहीं जाएगा, अपने कोई आदमी को भेज देगा। या यदि कोई बिल्डर है, बिल्डिंग बनाने वाला, उसके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10-15 बिल्डिंग बन रहे हैं या 50-100 बिल्डिंग बन रहे हैं, और उस एक बिल्डिंग में कई सैकड़ों फ्लैट हैं। आपको आइडिया होगा जब कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदता है तो उसका एग्रीमेंट करना होता है, और एग्रीमेंट करने में जिस व्यक्ति का वो बिल्डिंग है उस बिल्डर की भी साइन चाहिए। तो उस बिल्डर के तो हजारों फ्लैट है और रोज कई सैकड़ों फ्लैट बिकते रहते हैं, तो क्या हर बार यदि वो साइन करने के लिए कोर्ट में जाए तब तो बिल्डिंग बना ही नहीं पाएगा। तब वो क्या करता है, अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को रखता है, किसी एक व्यक्ति को चुनता है और उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। इसलिए वो बिल्डर स्वयं नहीं जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा कोई जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जब धर्म की स्थापना करनी होती है और दुष्टों का विनाश करना होता है तो भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान अपने किसी आदमी को भेज देते हैं, अर्थात अपने अवतार को भेजते हैं, जो भगवान विष्णु से होते हैं। ये नरसिंह, वामन, वराह, राम, ये सारे अवतार भगवान विष्णु से प्रकट होते हैं। परंतु यहां पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार स्वयं आते हैं। वैसे तो अवतार आते रहते हैं, परंतु एक दिन जैसे होता है ना कि एक सेठ की कई सारी फैक्ट्री होती है, तो वैसे तो उनके सेठ के जो मैनेजर हैं वो आते रहते हैं, परंतु साल में एक बार सेठ आ जाते हैं। वैसे भगवान के अवतार इस पृथ्वी पर आते रहते हैं, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि, परंतु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है ये गिनाते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारी युग, सही चारी युगे दिव्य एक युग माने। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग हैं। ये चार युग मिलकर एक चतुर्युग होता है। और एक चतुर्युग कितने वर्ष का होता है, सबसे पहले आप गिनती कर लीजिए। एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर युग से डबल 8,64,000 वर्ष, त्रेतायुग उससे त्रिपल कितना हुआ 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17,28,000 वर्ष तो ये कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होता है। 43,20,000 वर्ष जब होते हैं तब एक चतुर्युग होता है और उस एक चतुर्युग में भगवान के चार अवतार होते हैं। तो 43,20,000 में एक चतुर्युग होता है, एको तेरे चतुर्युगे एक मनवंतर। तो 43,20,000 इंटू 71 किया जाए तब एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर होता है। आप धीरे धीरे समझिए, 71 चतुर्युग इज इक्वल टू एक मनवंतर और 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसका अर्थ हुआ कि बयालीस अरब चौसठ करोड़ और अस्सी हजार वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं एक बार आते हैं। अच्छा, तो प्रश्न होता है तो कब आते हैं इतने बड़े इतने लंबे दिन में भगवान कब आते हैं? 71 चतुर्युग जिसमें होते हैं, अर्थात हम अभी कलयुग हैं, ये कलयुग चल रहा है। ऐसे कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर 71 बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन। और उस 71 चतुर्युग 71 इंटू 4 कितना होगा? 71 इंटू 4 284। ब्रह्मा जी के एक दिन में 284 भगवान के अवतार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 284 भगवान के अवतार होते हैं। परंतु यहां पर कह रहे हैं कि इस 284 में एक बार भगवान स्वयं आते हैं, इसलिए 283 होगा। परंतु एक बार नहीं, दो बार भगवान स्वयं आते हैं, इसलिए 282 बार भगवान के अवतार आते हैं और दो बार साक्षात भगवान आते हैं। अब कब कब भगवान आते हैं? आगे कहते हैं, वैवस्वत नाम एई सप्तम मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हैं, तो उसमें से सातवां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर जो अभी। और 27 चतुर्युग ताहर अंतर, और उस सप्तम मनवंतर में 27 चतुर्युग होते हैं। अष्टविंश चतुर्युगे द्वापर एर शेष, सातवें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में, सातवें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में साक्षात भगवान आते हैं। और आगे कहा गया है कि जिस समय जिस द्वापर युग में साक्षात भगवान आते हैं उसी के बाद वाले कलयुग में भी साक्षात भगवान आते हैं। इसलिए भक्तों, पिछले द्वापर युग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे, इसका अर्थ है कि इस कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसलिए 42,64,80,000 वर्ष के बाद इस कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। अब 42 अरब वर्षों के बाद भगवान आएंगे। भक्तों कल्पना करो कि आगे कुछ समय बीत जाएगा, फिर हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे कहेंगे कि हमारे नाना हमारे परदादा उस युग में थे जिस युग में महाप्रभु ने जन्म लिया। शास्त्र में लिखा जाएगा कि ये इष्टदेव प्रभु यहाँ पर मंदिर बनाए थे, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ये सुवर्ण युग है जिस युग में साक्षात भगवान आए हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि जहां पर भगवान आए हैं, और भगवान आकर जब जाते हैं तो उसका प्रभाव 5,000 वर्ष तक रहता है, कितना 10,000 वर्ष तक रहता है। भगवान जब आकर चले जाते हैं तो उसका प्रभाव 10,000 वर्ष तक रहता है। तो अभी भगवान 524 वर्ष पहले आए हैं, तो अभी बिल्कुल भगवान का प्रभाव चल रहा है। तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े धन्य हैं हम कि इस युग में, जिस युग में साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं, उस युग में हमारा जन्म हुआ है और उस ब्रह्मांड में जन्म हुआ है। नहीं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें चल रहा होगा सब कुछ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये गिनाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान साक्षात भगवान इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। और इसके और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि 4 युगों में भगवान के युगा अवतार होते हैं और उस युगा अवतार के रंग भी दिए गए हैं। कहते हैं सतयुग में जो युगा अवतार होता है उसका रंग सफेद वर्ण का है, त्रेता युग में जो युगा अवतार होता है उसका रंग रक्त वर्ण का है, द्वापर युग में जो युगा अवतार होता है उसका रंग शुक्र नाभात तोते के पंख के समान होता है, युगा अवतार का। और कलयुग में युगा अवतार का रंग श्याम वर्ण का होता है। तो हम यदि इतिहास खोलकर देखें तो सतयुग में जो युगा अवतार हुआ वह तो सफेद रंग का था, सतयुग में जो अवतार हुआ हंस अवतार सफेद रंग का था, त्रेता युग में जो अवतार हुआ यज्ञ अवतार वे रक्त वर्ण का था। परंतु गड़बड़ यहां पर है कि शास्त्र में कहा गया है कि द्वापर युग में युगा अवतार शुक नाभा कहते हैं तोते के पंख के समान होगा, परंतु हम देखते हैं कि द्वापर युग में तोते के पंख के समान भगवान का रंग नहीं है, श्याम वर्ण का है। तब क्या किया जाए? इसका अर्थ यह है कि द्वापर युग में युगा अवतार का रंग जो तोते के पंख के समान होता है, तो द्वापर युग में युगा अवतार नहीं आया, द्वापर युग में युगा अवतार नहीं हुआ, द्वापर युग में स्वयं भगवान आए, इसलिए स्वयं भगवान ही युगा अवतार का काम कर दिए और अपना निजी उद्देश्य संपन्न किए। ठीक उसी प्रकार कलयुग में युगा अवतार का रंग श्याम वर्ण का शास्त्र में दिया गया है, परंतु कलयुग में भगवान आए पीत वर्ण के। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में युगा अवतार नहीं आए, कलयुग में साक्षात भगवान आए जो युगा अवतार का भी काम कर दिए और अपना धर्म की स्थापना और अपना निजी उद्देश्य भी संपन्न कर दिए। तो इस प्रकार से हजारों हजारों शास्त्र की लिंक है, प्रमाण है कि भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अगले द्वापर में और इस कलयुग में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए और उसका अंतरंग कारण हमने चर्चा की है, बहिरंग कारण क्या है? कहते अनअर्पी चरिम चिरात करुणा वतीर्ण कलो। भगवान इस युग में करुणा करने के लिए आए। मैं कल ही पढ़ रहा था अनअर्पित चरिम चिरात, चीर काल से बहुत बहुत काल से भगवान ने अर्पित जो नहीं किया है, अनअर्पित माने देना और अनअर्पित माने नहीं देना, तो अनअर्पित जो नहीं दिया है कब से? चरिम चिरात बहुत बहुत काल से नहीं दिया। कितने काल से? क्लियर पता है 42 अरब और 64 करोड़ इत्यादि, 42 अरब वर्षों से जो नहीं दिया है अनअर्पित चरिम चिरात करुणा। क्या नहीं किया? करुणा नहीं किया। तो भगवान ने 42 अरब वर्ष से करुणा नहीं की है, तो क्या प्रश्न होता है भगवान के इतने अवतार हुए तो इतने अवतारों में भगवान ने करुणा नहीं की? नहीं की। भगवान के असंख्य असंख्य अवतार हुए परंतु करुणा नहीं हुई। इसलिए आप भागवत खोलकर देख लीजिए, कहीं भी भगवान का अवतार हुआ है तो करुणा नामक शब्द कहीं नहीं है, चाहे नरसिंह वामन वरा, भगवान कृष्ण के अवतार में भी, कृष्ण भी जब आए तो सुखदेव गोस्वामी करुणा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु यहां पर महाप्रभु के अवतीर्ण में करुणा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने इस जीव पर विशेष करुणा की है। करुणा का अर्थ क्या होता है? करुणा का अर्थ होता है जो पात्र देखे बिना किसी को दान कर दे उसे करुणा कहा जाता है, और जो पात्र देखकर किसी को दान दे उसे करुणा नहीं कहा जाता है, उसे केवल दान कहा जाता है। दानी तो बहुत लोग हैं इस संसार में, दान दान सब लोग देते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया करोड़ रुपया, परंतु इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दान भी दे और पात्र भी दे। चैतन्य महाप्रभु, आप देखो भगवान के अनेक अनेक अवतार, नरसिंह देव आए तो हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला, भक्त नहीं बनाया। क्यों भगवान नहीं बना सकते थे? भगवान रामचंद्र आए, रावण सामने खड़ा था, कुंभकर्ण बाली सब लोग खड़े थे, सबको मार डाला, क्या अपनी भक्ति नहीं दे पाते थे? राम आए, नरसिंह आए, भगवान कृष्ण आए, साक्षात कृष्ण भी यह कार्य को नहीं कर सके। वे तो जन्म से ही 3 साल की उम्र से ही पूतना अगासुर बकासुर सफाया करने लगे। जैसे म्युनिसिपालिटी वाले रास्ते को साफ करते हैं, वैसे भगवान कृष्ण, भगवान आए, भगवान के अवतार आए, सब लोग को मारा, परंतु किसी को भक्ति नहीं दिए। परंतु कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो आए, वे किसी को मारे नहीं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी महाप्रभु के सामने आया तो महाप्रभु ने गले लगाया और उसे अपनी प्रेम भक्ति का दान कर दिया। पात्र अपात्र देखे बिना, अन्य अन्य अवतारों में भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाना पड़ता था। सुदामा जी एक मुट्ठी चावल लेकर कृष्ण के पास गए तब कृपा हुई, अन्यथा कृपा नहीं हुई। अन्य अन्य जितने अवतारों में भगवान ने यदि कृपा की भी है, फिर भी उनके पास जाना पड़ा। परंतु इस विलक्षण अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं चलकर ऐसे जीवों के पास गए जो पात्र नहीं थे। सबसे कामी से कामी व्यक्ति, म्लेच्छ, यौवन, शबर, कुत्ते खाने वाले, मांस खाने वाले, सुअर को खाने वाले के पास जा जाकर महाप्रभु गले लगा लगाकर अपनी स्व भक्ति प्रेम भक्ति का दान की। वास्तव में महाप्रभु की ये विशेष करुणा है। इसीलिए इस संसार में और जितने भगवान है उसे प्रभु कहा जाता है, दानी कहा जाता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहा जाता है। महाप्रभु, प्रश्न होता है कि कृष्ण प्रभु है, राम प्रभु है, निमाय को, चैतन्य को महाप्रभु क्यों? महाप्रभु इसलिए कहा जाता है क्योंकि चल चल कर लोगों के पास गए और उनका उद्धार किया। मिलेच्छ, यवन, पात्र पात्र देखे बिना सबके पास जा जाकर अपने शुद्ध भक्ति का दान प्रदान किया। और रूप गोस्वामी को भी जब लिखना हुआ महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, तो कहा ओम महावदान्याय। वदान्याय तो बहुत लोग है, दान तो बहुत लोग करते हैं। भगवान ने भी सुदामा को दान किया था, परंतु तब तक नहीं किया जब तक बिचारे सुदामा चल कर नहीं गए। परंतु यहाँ पर स्वयं संन्यास लेते हैं और संन्यास लेकर नगर नगर गांव गांव में घूम घूम कर लोगों को अपनी प्रेम भक्ति का दान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय कहा जाता है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का बहिरंग कारण, मुख्य कारण क्या है? बहिरंग कारण में मुख्य कारण, बहुत बहुत जन्म से, बहुत काल से, अन अर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, बहुत बहुत कालों से भगवान ने जो अपनी प्रेम भक्ति किसी को प्रदान नहीं की, वे प्रेमा भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। भगवान ने देखा कि लोग विधि भक्ति ऐश्वर्य भक्ति कर रहे हैं, प्रेम भक्ति कोई नहीं कर रहा है। प्रेम भक्ति सिखाने के लिए आपनी आचरित प्रभु जीवे सिखाए। और भी भगवान ने अपने धाम में बैठ कर देखा, सतयुग में गया, परंतु किसी ने भक्ति स्वीकार नहीं किया। राम अवतार लेकर धर्म का पालन किया, फिर भी कोई इसे स्वीकार नहीं किया। कृष्ण के रूप में साक्षात में गया और अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवत गीता का ज्ञान दिया, परंतु फिर भी भगवत गीता को पढ़ने की जीवन में उतारने की बात दूर रही। पता भी, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है भगवत गीता क्या है। तब भगवान ने अपने धाम में बैठकर सोचा कि इतनी सुंदर गीता देकर आया हूं, लेकिन फिर भी लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यद्यपि यदि कोई इसे पढ़ ले तो आपन संस्कृति घोराम यन्नाम कहते हैं, क्या है श्लोक, संसार सागर होई तत इच्छामि यो नरह। कहते हैं कि ये संसार दावानल के समान है। रोज सुबह हम गाते हैं संसार दावानल जल रहा है। परंतु यदि कोई मनुष्य इच्छा करे तो इस दावानल से मुक्त हो सकता है। कैसे? गीता नाव समा रही है, गीता रूपी नाव में सवार होकर पारम गोतु सुखे नच, इस दुख रूपी सागर को सुखी से पार कर सकता है। परंतु गीता को कोई जानता ही नहीं है, और यदि कोई जानने लगा तो पढ़ता नहीं है, और यदि कोई पढ़ने लगा तो उसे समझ नहीं सकता है, और यदि कोई समझ लिया तो जीवन में नहीं उतारता है। कौन नहीं जानते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, किसने छोड़ा? भगवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु नमस्कुरु। कौन मन देता है, कौन बुद्धि लगा रहा है? भगवान ने देखा कि इतना चिल्ला चिल्ला कर आया फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और कुछ लोग समझते भी हैं तो समझ, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ गीता सही है, परंतु गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान निराकार है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसकी भक्ति करनी चाहिए, तो लोग मूर्ख भरी बातें करने लगे। तब भगवान ने कहा कि ये लोग मेरे उपदेश को भी पानी फेर दिए। कुछ लोग गीता का सार निकालते हैं, गीता सार, भगवान धाम में बैठकर हंस रहे होंगे अपने धाम में बैठकर कि मैं इतना सुंदर ग्रंथ देकर आया और कलयुग के लोगों ने गीता सार निकाला। क्या सार निकाला? दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, और उसको संतुष्ट करना ही हमारी पूजा है। ये हो गया गीता सार। आजकल बहुत जगह पर ये लिखा हुआ होता है, क्या यही है गीता सार? भगवान अपने धाम में जाकर देखे कि इतना सुंदर गीता देकर आया फिर भी लोग इसे समझ नहीं पाए, तब जाकर भगवान को विचार आया कि अब जब तक मैं स्वयं इस धराधाम पर नहीं जाऊंगा और मैं स्वयं आचरण करके नहीं दिखाऊंगा तब तक कलयुग के मूर्ख जीव समझने वाले नहीं। वास्तव में कलयुग के जीव, भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी कहते हैं प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य पुत्रता। बहुत कम आयुष्य, बहुत कम बुद्धि वाले हैं। तो भगवान ने देखा कि ये लोग उपदेश से नहीं समझ पाएंगे। आप देखे होंगे नर्सरी में, जूनियर सीनियर केजी में लड़के जो पढ़ते हैं तो टीचर बोर्ड पे लिखती है ए फॉर एप्पल, अपनी अपनी स्लेट में लिखिए, तो मूढ़ बालक कुछ समझ नहीं पाता है, बैठा रहता है। तो दूसरी बार टीचर कहती है ए फॉर एप्पल, एप्पल लिखिए अपनी स्लेट में, तभी वो बालक कुछ लिखता नहीं है। तीन चार बार जब वो टीचर कहती है फिर भी वो बालक नहीं लिखता है, तब टीचर क्या करती है? वे स्वयं उसका हाथ पकड़ती है और फिर ए फॉर एप्पल करके लिखाती है। भगवान ने देखा कि ये लोग उपदेश से नहीं समझेंगे। अब जब तक भक्त बनकर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं स्वयं मेरी भक्ति करके दिखाऊंगा नहीं, तब तक ये लोग भजन करने वाले नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भक्त बनकर इस धराधाम पर आए और आपनी आचरित प्रभु जीवे रसिकाए किस प्रकार से कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार से महामंत्र जपना चाहिए, किस प्रकार से रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए, किस प्रकार से कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भक्त बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगत को सिखाया। तो महाप्रभु के जन्म लेने के अवतार का यह बहिरंग और मुख्य कारण है कि संसार के लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए आए। तो आज के प्रवचन में सबसे पहले हम महाप्रभु के प्राकट्य का अंतरंग कारण जाने। उसमें तीन कारण है, एक तो भक्ति में कितना सुख है, कितनी मात्रा में सुख है यह जानने के लिए, फिर वह सुख कैसा है यह जानने के लिए, और तीसरा कारण अपनी सुंदरता का आस्वादन करने के लिए। तीन और बहिरंग कारण में संसार के लोगों को, जगत के लोगों को अपनी प्रेम भक्ति देने के लिए, प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए आए। अब महाप्रभु के जन्म का बहिरंग कारण और भी एक है, परंतु वह कारण हम शाम के प्रवचन में जानेंगे, और वह कारण है अद्वैत आचार्य की पुकार। किस प्रकार अद्वैत आचार्य महाप्रभु को पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे, और भगवान का सिंहासन डोल जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में आज ही के दिन शाम को बहुत सुंदर हरी बोल जगत को भगवान अपने नाम में जुमाते हुए, नचाते हुए भगवान अवतार लेंगे। तो यह कथा हम शाम को श्रवण करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, शाम को इस प्रवचन में और इस अभिषेक महोत्सव में भाग लें और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे।